राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम मधुर प्रार्थनाएं जो भगवान के भागवत पुरुषों ने भगवान के की हैं, उनके अंतर्गत कल हमने भीष्म पितामह की प्रार्थना प्रयाण काल अंत समय में भगवान को जो उन्होंने की है, और श्रील प्रभुपाद ने कहा ऐसा सौभाग्य सबको ही भगवत गीता जो भगवान से अभिन्न है उसका अध्ययन करना, भगवान की वाणी के रूप में उसको सदा अपने साथ रखना। कल गीता जयंती है तो ये, और फिर भागवत को आगे पढ़ना, ऐसे हम कृष्ण के साथ अपना संपर्क बना रख के रख सकते हैं अंत समय भी। और आज हम दसवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, दसवां अध्याय शुरू होता है प्रश्न से के महाराज युधिष्ठिर को जो राज उससे छीना गया था वापस मिला, फिर उसके राज उसने कैसे किया। तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों के सहयोग से इस पृथ्वी के ऊपर एक छत्र राजा के रूप में राज किया, और उसके राज के समय में समय पर बरसात आती थी और हर प्रकार के ऋतु का फल, सब्जियां, अन्न, दूध, दही, नदियां बहती थी, समुद्रों में से मोती मिलते थे, पर्वतों में से सोना चांदी मिलता था, हर प्रकार की सुविधा थी। गाय बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी, खेत से आते हुए जमीन अपना दूध से जमीन को सींच लेती थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं जिसके पास भूमि और गाय है वो असल में आर्थिक व्यवस्था में सबसे सुखी है। और फिर लिखा है कि सातवें श्लोक तक तो ऐसे वर्णन किया है युधिष्ठिर महाराज के राज का, और फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेकर, और युधिष्ठिर महाराज ने जब अनुमति दी तो भगवान सबसे विदा लेकर, नाम लिखा है बहन सुभद्रा का, द्रौपदी का, गंधारी का, सत्यवती का, और मत्स्य सत्यवती का नाम लिखा है, विराट पुत्री उत्तरा का, इन सबको, और फिर भगवान रथ के ऊपर चढ़े। और रथ के ऊपर चढ़े तो उस वक्त मृदंग बजने लगे, ढोल बजने लगे, स्त्रियों के आंखों में आंसू आ रहे थे, वो आंसू रोक रहे थे कि विदाई के समय आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। भगवान जिसका संग किसी को प्राप्त हो जाए, भाग्य से दुसंग छूटता है तभी सत्संग मिलता है, और तभी भगवान, और भगवान जिसके साथ इतना पांडवों का प्रेम था, उनसे जुदाई उनसे सही नहीं जा रही थी, वो इधर उधर आंखें नीचे करके इधर उधर घूम रहे थे, आंखों से आंसे बह रहे थे। उस वक्त कुरुकुल की स्त्रियां महलों के ऊपर चढ़ गई और ऊपर से भगवान को कैसे देख रही हैं। वो अपनी प्रार्थना तो 20वें श्लोक से शुरू करेंगी, लेकिन 16 श्लोक में लिखा है प्रासाद शिखर आरूढ़ा कुरो नार्योदृक्षया विवरशुः कुसुमयी कृष्णम प्रेम व्रीड़ा स्मित क्षणा। प्रासादा का मतलब महल, और शिखरा उनके शिखर के ऊपर, मतलब जो ऊपर कटारे बने हुए थे उनके ऊपर चढ़ गई। कौन? कुरु स्त्रिया, कुरु नार्य। कुरु वंश तो बहुत बड़ा वंश है, सब नारियां चढ़ी। काय के लिए चढ़ी? दिदृक्षया, दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, कोई काम भी था। क्या काम था? विवर्षही कुसुमही कृष्णम, दर्शन कृष्ण का करना था। लेकिन पुष्प वृष्टि करना, ऊपर से पुष्प वृष्टि फूल ले गई, ऊपर से वर्षा कर रही थी फूलों की, तो ऊपर से फूलों की वर्षा होगी तो भगवान देखेगा कौन कर रहे हैं। तो उस वक्त कैसे देख रही थी? प्रेम से देख रही थी, व्रीड़ा कहते हैं लज्जा से देख रही थी, और स्मित तक्षणा मुस्कुरा कर, आंखें लज्जा से निम थी, मुस्कुराहट थी, प्रेम था, और वो दर्शन कर रही थी ऊपर से। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं विशेष रूप से लज्जा और प्रेम से मुस्कुराते हुए भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी कुरु नारियां, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है कि लज्जा नारी का सबसे बड़ा भूषण है, बड़ी सुंदरता है, जिसके द्वारा नारी पुरुषों को से पुरुषों से सम्मान ग्रहण करती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, महाभारत के समय में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ नीचे आके रथ के चारों ओर खड़ी नहीं हो गई। प्रभुपाद जी का ये तो गलत धारणा है, लोग कहते हैं कि जब यहाँ मुसलमान राज आया तब पर्दा हुआ, नहीं, पहले भी स्त्रियों का अलग स्थान हुआ करता था बैठने का, समाज के अंदर मिलने का, तो ऐसे छत के ऊपर चढ़ के स्त्रियां जो है भगवान को ऐसे प्रेम से देख रही हैं और लज्जा से। प्रभुपाद जी फिर लिखे हैं लज्जा के लिए कि लज्जा हो नारी की, चाहे बिचारी वो किसी छोटे परिवार से भी हो, छोटे खानदान से भी हो, फिर भी उसका सम्मान होता है। प्रभुपाद जी कहते वो झाड़ू लगाने वाली नारी भी लज्जा वाली है तो उसका सम्मान किया जाता है, और आजकल की आधी नंगी लड़कियां जो घूम रही हैं उनको तो सब छेड़ते हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है। प्रभुपाद जी समाज के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, और ये प्रभुपाद जी ने तो लिखा है, समझो कि आप 64-65 में लिखा है। 65 में तो उन्होंने पहला अपना 66 में पहला अपना पुस्तक दिया था लाल बहादुर शास्त्री मान्य को भागवत का, तो ये समझ लो कि 60s के लास्ट पार्ट में लिख रहे हैं, तब उनको ये सभ्यता इतनी गिरी हुई दिख रही थी। आज 60 सालों के बाद, 70 सालों के बाद तो कितनी धज्जियां उड़ी होंगी। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भारत के ऋषि हैं उन्होंने असल में हमको आत्मा की दृष्टि सिखाई है। शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का पुतला है, ये तो पंच तत्वों का बना हुआ है, इसलिए आत्मा के स्तर के ऊपर हमारी सभ्यता स्तर है। ये आत्मा है जो सुंदर है, उसकी सुंदरता को समझने वाले बुद्धिमान है। यही वेदों की वास्तविक व्यापक दृष्टि है, परंतु आजकल अज्ञान और अंधकार के कारण लोगों को ये सब जानकारी है नहीं। और फिर उदाहरण देते हैं, वैसे इसलिए वेदों ने ऐसे हमको समझाया, नारी मक्खन के समान है और पुरुष आग के समान है, दोनों निकट आएंगे तो निश्चित रूप से, और नारी आग के समान है, पुरुष मक्खन के समान है, दोनों अगर निकट आएंगे तो मक्खन पिघल जाएगा, इसलिए समाज को सुरक्षित रखने के लिए समाज में दूरियां और नारी के लज्जा का भूषण ये बहुत महत्वपूर्ण। भीष्म पितामह की शिक्षाओं में भी नारी की धर्म का शिक्षा में नारी की लज्जा का बड़ा महत्व है। अब क्योंकि कुरु नारियां जिसका प्रार्थना करके जिसकी महिमा गाएंगी उसका दर्शन करें कि वो कैसे हैं, तो इस वक्त हमने देखा वो ऊपर चढ़ गई तो नीचे क्या देख रही है, सीता पतरम जगराह मुक्ता दाम विभूषितम रतन दंडम गुड़ाकेश प्रिय प्रियमसय प्रियतमसय। भगवान रथ के ऊपर विराजमान है और गुड़ाकेश अर्जुन, सीत आतपत्र कहते हैं छत्र को, जैसे छाता होता है, और बहुत सुंदर सफेद छाता, उसके ऊपर हीरे माणक मोती लगे हुए थे और रतन का दंड था, वो बड़े प्रेम के साथ अर्जुन जिसका कृष्ण बहुत प्रिय है उसके ऊपर छत्र धारण करके, भगवान के ऊपर छत्र अर्जुन ने धारण किया हुआ था। और शिला प्रभुपाद लिखते हैं इतने हीरे मोती माणक ये सब चीजें प्रकृति देती है, और यही किसी समृद्धिशाली अर्थव्यवस्था की पहचान है, इतना सुंदर। और फिर कहते हैं आजकल ये गत्थे के प्लेट के ऊपर खाने वाले सोने चांदी को के बर्तनों को भूल गए और समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ी प्रगति कर चुके हैं, ये मूर्खता है। और कौन दिख रहा था भगवान के रथ के ऊपर? देखो, भगवान का वर्णन करने से पहले भगवान के भक्तों का वर्णन हो रहा है। उद्धव सात्यकश्चैव व्यजने परमाद्भुत, व्यजने व्यजने परमाद्भुते विक्रियमाण कुसुम ही रेजे मधुपति पथि। भगवान हमेशा ये दो साथी साथ रखते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे थे, एक तो बुद्धिमान मंत्री उद्धव है, कभी भी कोई आवश्यकता है मंत्र ना लेनी है तो उद्धव मंत्री है। वह वृष्णि नाम परवरो, वृष्णि में, और उद्धव बृहस्पति शिष्य साक्षात, और भगवान का सखा है, दैत्य सखा है। और दूसरा है सात्यकी, जो अर्जुन का शिष्य है, महाभारत में पांच पांडवों के साथ यही एक जीवित बचा था, और ये यदुवंशी बहुत बड़ा महारथी है, ये भगवान का जैसे अंग रक्षक की तरह साथ है। तो ये दो क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में बड़े बड़े पंखे हैं, व्यंजन स्व और परम अद्भुत है। अद्भुत का मतलब है कि वो रत्नों से जड़े हुए हैं, बहुत सुंदर व्यंजन है। विक्रियमाणा कुसुमई, और भगवान उस वक्त, प्रभुपाद ने लिखा है कि उनके रथ के ऊपर फूल इतने बरसे थे कि उसके ऊपर भगवान बैठे थे। चक्रवर्ती पाद लिखे, रास्ते में फूलों की इतनी वर्षा की थी कि भगवान और का रथ उन फूलों के ऊपर से चल के जा रहा था। रेजे मधुपति, मधुपति भगवान श्री कृष्ण का नाम, पथी मतलब रास्ते में, मधुपति मधुपति श्री कृष्ण के रास्ते में कुसुमई बहुत ज्यादा फूल की वर्षा की हुई थी, उसके ऊपर से आगे भगवान जा रहे थे। और उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त एक ध्वनि हो रही थी, नारियां प्रार्थना करें उससे पहले, आशोर्यंता शीश सत्यास तत्र तत्र द्वे जिरिता नानुरूपानुरूपश्च निर्गुणश्च गुणात्मनः। आशूर्यमान आवाज आ रहा था, सुनने में आ रहा था, क्या आशीष ब्राह्मण सा, ब्राह्मण जो है आशीष दे रहे थे, सुखी रहो हे यदुनंदन, सुखी रहो कृष्ण, सुखी रहो सत्यास आशीषा सत्यास, वो सत्य कह रहे थे, जो सत्य कह रहे थे, वेदों के वाक्य कह रहे थे, तत्र तत्र यहां वहां जहां देखो द्विज इरता बड़े बड़े विद्वान पंडित गा रहे थे। बोले वो कैसे लग रहा था, सुखदेव कहते नानुरूप अनुरूप, वो भगवान के अनुरूप नहीं था। भगवान को क्या कहोगे सुखी हो, वो तो हद सदा आनंद में रहते हैं, वो है ही सच्चित आनंद मूर्ति, तो उसको सुखी कैसे रखोगे, तो इसका मतलब उनके अनुरूप नहीं थे, वो तो भगवान है, परम पुरुष है, उसको आशीर्वाद की क्या जरूरत है। परंतु ये रूप भी अनुरूप भी थे, क्यों, इसलिए कि भक्तों के साथ भगवान जो निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है, उनमें इतने सगुण है, इतने सुंदर गुण है कि भक्तों की आशीर्वाद दे रहे। तो भगवान भी कह रहे थे आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं सुखी हूं, सब परिवार यदुवंश कुशल से है। तो ये भक्त और भगवान के बीच में परस्पर इसलिए अनुरूप भी थे और अनुरूप नहीं भी थे, तो इसका ये भाव है। अरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, विशेष रूप प्रभुपाद का ये दोनों बातें रूप अनुरूप ऐसे है कि भगवान के विषय में कुछ कहा जाए तो विपरीत भी हो तो उसमें शांत होता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि भगवान का नाम माखन चोर है, वृंदावन में बचपन में मक्खन चोरी करते थे, अभी और कहीं कोई चोरी करे तो उसका कोई, उसकी तो बदनामी होती है लेकिन माखन चोर के नाम से पूजे जाते हैं। तो ऐसे भगवान के लिए प्रेम से कुछ भी कहा जाता है, भक्तों की वो आशीर्वाद बहुत भगवान को अच्छी लगती है। और भगवान और भक्तों के बीच में प्रभुपाद ने ये शब्द लिखा है, क्योंकि भगवान परम सत्य है, भले विरुद्ध हो एक दूसरे के, परंतु भगवान में वो सब समावेश हो जाती हैं। अब यहां से ये स्त्रियों की बात शुरू हो रही है। अन्यो अन्यमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। अन्यो अन्य एक दूसरे को ऊपर खड़ी थी, बहुत सारी थी, एक दूसरे को आसीत संजल्प जहां बैठी हुई थी तो एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। संजलिप का मतलब सम्यक जल्प, अच्छी बातचीत कर रही थी। किसके विषय में? उत्तम श्लोक चेतसाम, उत्तम श्लोक भगवान जिसके सुंदर वेदों में जिनका वर्णन किया गया है विशेष श्लोकों के द्वारा, और चेतसाम का मतलब जिनका चित्त उस उत्तम श्लोक में आसक्त है। कौरवेंद्रिय पुर स्त्री, कौरवेंद्रिय इसका मतलब सामने स्त्री, कौरवेंद्र मतलब कौरव कुरु वंश के राजाओं की, बड़े बड़े महावीरों की पत्नियां थी। स्त्री ना सर्वश्रुति मनोहर, सर्वश्रुति मनोहर का मतलब दो है। एक तो ये जो बात कर रही थी ये तो स्त्रियां थी, कोई वेद पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उनकी बातें वेद के समान मन को मीठी लगने वाली थी और कानों को बड़ी रसीली लगती थी और वेद के वाक्य के समान थी। तो यहां चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कौरवेंद्र नारियां कृष्ण के ऊपर पूर्ण उसके चिंतन में तलीन थी, और आपस में जो कृष्ण के विषय में बात कर रही थी वो मन और कानों को रस देने वाली थी, और इसका दूसरा भाव है उपनिषद और वेदों का सार थी। श्रील प्रभुपाद जी लिखा है, लिखते हैं भगवद गीता में तो लिखा है कि वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण की महिमा को गाना। वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, इन सब में भगवान की महिमा लिखी है। ये सामान्य स्त्रियां हैं, ये कुरुराज कुल की स्त्रियां हैं, उनकी जो भगवान की ये प्रार्थना है ये वेदों की वाणी के समान और उससे भी महान है। जो भगवान के विषय में गाया जाए उसको श्रुति मंत्र कहा जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे गौड़ीय आचार्य में आज का जो भजन था नरोत्तम दास ठाकुर का गाया जा रहा था, वृंदावन रमणीय स्थान, ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये असल में है तो सामान्य बंगाली भाषा में, लेकिन ये है वेदों का सार, ये है श्रुति के मंत्रों के समान। तो ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान की कृपा से ये सब श्रुति के मंत्र अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन नारियों की महिमा जो ये गा रही थी कृष्ण की, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद और महिमा से अधिक मधुर थी। अब क्या कह रही है? पहली पहला श्लोक 21वें में शांत भाव में भगवान की, के जैसे प्रलय होती है भगवान आदि पुरुष है उसका वर्णन कर रही है। और ये नारी ऐसे विषय का वर्णन कर रही है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी समझ में नहीं आएगा। सवाई कीला यम पुरुष पुरातनो या एक आसीत अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मना निशिसुप्तः शक्तिशो। स इशारा करती है उंगली से ऐसे नीचे रथ के ऊपर, वो सफेद अर्जुन के हाथ में छाता लिया हुआ है, उसके नीचे जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, और एक तरफ उद्धव और एक तरफ सात्यकी खड़े हैं व्यंजन लेके। वो जो है पुरुष वही हम इस बात को स्मरण कर रही हैं। कहां से सुना था? व्यास आदि से सुना है हमने। व्यास देव तो घर में आते थे, कौरवों के सभा में व्यास देव आया करते थे, सत्यवती के पुत्र थे, बुलाते थे, आते थे, तो उनसे हमने सुना है। क्या कील अयम? यही निश्चित रूप से यही है वो। कौन? पुरुष पुरातन, जो आदि पुरुष है, जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि से पहले होता है और सारी सृष्टि प्रलय के समय जिसमें समा जाती है, वो यही है। ये बहुत बड़ी बात कह रही है। पुरुष पुरातन, पुरातन का मतलब आदि पुरुष, एक वो एक है और कोई नहीं उससे पहले, गोविंदम आदि पुरुषम, वो एक ही है। आसीत अविशेष, तब और कोई नहीं होता, अकेला होता है और उसके बराबर भी कोई नहीं है। वो कब? आत्मनि अगरे गुणे भ्य, जब ये प्रकृति के गुणों में सृष्टि से करने से पहले जब ये गुण सामान्य स्थिति में होते हैं, तब ये अकेला रहता है और कोई नहीं होता है। और फिर ये है कौन? जगत आत्मा नहीं, ये जगत की आत्मा है, ये जगत की आत्मा है और ईश्वर है और ये सबका स्वामी है। निमिलित, और जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो सब मिल जाते हैं। कौन? जीव आत्मनि, सारे जीव आत्मन सब मिल जाते हैं। निशी सुप्ता, जैसे रात को कोई सो जाता है, शक्तिशु, उनकी सारी शक्तियां उस वक्त शरीर समाप्त हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में वो सब इस भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। प्रलय के समय मुक्त नहीं हो जाते हैं, प्रलय के समय सिविल प्रवेश करते हैं। दोबारा सृष्टि होती है तो जहां जहां जो जो उनके कर्म थे उनके अनुसार नया शरीर मिलेगा। जैसे हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, जो काम जहां छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। तो यहां इस श्लोक का अर्थ हुआ यही है वो पुरातन परम पुरुष भगवान जिसको हम याद करते हैं। निश्चित रूप से ये वही है जो प्रकृति के गुणों में क्षोभ हुआ उससे पहले अकेले थे, और जब प्रलय होती है तो सभी इसमें समा जाते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, गुणों के क्षोभ से पहले यही परम पुरुष अकेले थे और प्रलय के बाद सभी जीव इसी में समा जाते हैं, यही जगत का ईश्वर है। तो पहले शांत रति, शांत भाव, पांच भावों में शांत भाव के स्तर के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये है परम पुरुष। अविशेष का मतलब इसकी और कोई विस्तार नहीं थे उस वक्त, वे अकेले थे। या अविशेष का अर्थ है इसके समान और कोई नहीं है, इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि ये अकेले ही थे। और ये हमने व्यास से सुना है, निश्चित रूप से हम इस बात को जानती हैं कि कृष्ण जो ये है ना, यही वो पुरुष है जो सृष्टि से पहले है और प्रलय के समय सब इसी में समा जाते हैं। चक्रवर्ती पाद उंगली का इशारा करके कृष्ण की ओर बता रहे, एक दूसरे को कह रही है ये वही है, गुणों में क्षोभ होने से पहले ये अकेला था और प्रलय के समय सभी इसमें समा जाते हैं। ये ईश्वर है, ये प्रकृति का स्वामी है, ये जगत आत्मनि है। जीव बेचारा अज्ञानता में होता है, प्रलय के समय भी मुक्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। वो सुपत शक्तिशु, सुपत शक्तिशु, उसकी शक्तियां सुपत हो जाती हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहता है और दोबारा जब सृष्टि होती है तो फिर दोबारा उसका जन्म होता है। अब एक और अर्थ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इसका एक अर्थ ऐसा और हो सकता है, कृष्ण आदि पुरुष है, गुणों के क्षोभ से पहले थे, अपने स्वरूप में थे, जैसे गोविंदम आदि पुरुषम, जो अभी अपने भक्त, जो बहुत से अपने भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं अपने स्वरूप में, वही अकेले थे। बाकी सृष्टि के विषय में बात है, प्रभुपाद जी तो इसको अंग, ये तो नंबर बता रहे हैं कि दो प्रकार की प्रलय होती है, दो प्रकार, एक ब्रह्मा जी के रात की प्रलय, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा, एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी का दिन 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 पूरा होता है, रात होती है, वो भी है 4 अरब 32 करोड़ साल, तब एक प्रलय हो जाती है। और इसके डबल हो जाएगा दिन रात ब्रह्मा जी का, और ऐसे दिन रात के हिसाब से हो जाएंगे 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल, और ब्रह्मा जी रहते हैं 100 साल। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये इसका डबल को 30, 12, 100 से गुणा करो, इतने सालों के बाद महाप्रलय होती, और जब महाप्रलय होती है तो वो सारा महत्त्व और सारे जीव तत्व ये सब भगवान में समा जाते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु में सब ये समा जाते हैं, क्योंकि सृष्टि होती है तो गर्भोदक्षा के पेट में से निकलते हैं, तो ये सब भगवान में समा जाते हैं, और उस वक्त ये सब सोए होते हैं, सुषुप्ति शक्ति इनकी सोई होती है, और फिर दोबारा जब ये सृष्टि तो निरंतर चलती रहती है, प्रलय होगी फिर सृष्टि होगी, फिर रहेगी कुछ समय, फिर प्रलय होगी फिर सृष्टि होगी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान आदि पुरुष पहले थे, श्रुति में भी ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु जब न ब्रह्मा था न शंकर था तब अकेले भगवान, ये उस भगवान की बात कर रहे हैं जो सृष्टि कर रहा है, या भाई महाविष्णु, लेकिन उस कृष्ण तो आदि पुरुष इनसे भी पहले है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो कारण सागर में सोए हैं और उनके रोम रोम स्कोप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है जो कारण सागर में घूमता फिरता है, और फिर उसके एक एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षा विष्णु जाता है, फिर इस तरीके से जैसे एक बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ का बीज में से कितने पीपल के पेड़ होते हैं, ऐसे कितने ही ब्रह्मांड वहां से निकलते हैं। लेकिन वो कौन है, ये जो महाविष्णु है ये कौन है, कारण दक्षाई विष्णु कौन है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा संहिता में लिखा है कारण जले जो सोता है विष्णु, वो भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार है, अंश है, कला है। गोविंद आदि पुरुष जो है, भगवान गोविंद जो आदि पुरुष है महाविष्णु, उसका एक उसका कारण भी श्री कृष्ण है। तो ये जो स्त्रियां कुरुवंश की नारियां, ये तो वेदिक वेद का सत्य, वेदों के सत्य को प्रमाण से बता रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे प्रमाणिक पुरुष से सुना हुआ है तब ये बता रही है, कोई वेद पढ़ी हुई नहीं है लेकिन प्रमाणिक पुरुषों से सुना है, पर व्यास जैसे महाव्यक्ति से सुना है इसलिए जो बता रही है ये सत्य है। प्रभुपाद कहते सुनने के अतिरिक्त और कोई रास्ता है नहीं, प्रमाणिक पुरुष से सुनने से ही वेद समझ में आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इतना कोई बड़ा विद्वान हो पढ़ा लिखा हो उसकी आवश्यकता नहीं है, सुनने में निम्रता पूर्वक सुने और सुनने की इच्छा हो और सुनाने वाला प्रमाणिक हो तो सब कुछ स्पष्ट समझ में आ सकता है। महाविष्णु के अंदर सारे जीव समा जाते हैं ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद महाप्रलय के समय, तब भी प्रभुपाद जी कहते हैं इसका मतलब नहीं है कि वो मुक्त हो गए। तो वहां सुप्त उठाए न्याय, मतलब जैसे सोया हुआ उठता है, ऐसे जब दोबारा सृष्टि होती है तो वहां जो कर्म उसके जहां थे, जो जहां खत्म किया था वहां से उसका प्रारंभ फिर दोबारा शुरू होता है। भगवद गीता में भी ये लिखा है बार बार प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, फिर वह जीव भूत ग्रामम, फिर दोबारा उसकी सृष्टि होती रहती है। तो प्रभुपाद जी 8वें अध्याय भगवद गीता से उदाहरण दे रहे हैं। अब ये कौरविंद्र नारियां और क्या कह रही हैं आगे, ये तो बात की सृष्टि से पहले और प्रलय का, अब सृष्टि की बात कर रही है। सएव भूय निज वीर्य चोदितम स्वजीव मायां प्रकृतिम सिसृक्षतिम अनाम रूपात्म निरूपनामनि विधित समानो अनुसुशास साष्ट कृता। सएव ये वही है श्री कृष्ण जो सामने जा रहा है, रथ के ऊपर विराजमान है ना, यही भूय निज, ये दोबारा प्रलय के बाद दोबारा निज वीर्य अपनी शक्ति से चोदिता, अपनी शक्ति को आदेश करता है, निज स्वयं का निज वीर्य चोदिता अपनी शक्ति को आदेश करता है। स्वजीव मायाम जो बाहर अंग शक्ति है जो जीवों को शरीर देती है, प्रकृतिम शिश्रक्षताम, शिश्रक्षताम का मतलब दोबारा सृष्टि करने के लिए, ये प्रकृति को कहता है आप सृष्टि करो, भगवान स्वयं नहीं करते हैं। मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौनते जगत में परिवर्तते, भगवान के केवल अध्यक्षता में निर्देश में काम करती है। इसका मतलब भगवान ने निज वीर्य से उसको शक्ति दे दी और फिर उसने सृष्टि शुरू कर दी। किसकी? अनाम, जब जीव अपने जीव आत्मा है उसका कोई नाम नहीं है, अनाम कोई नाम नहीं है, रूपात्मनि रूप नामनि, अब उनको शरीर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर मिलेगा और स्थूल शरीर मिलेगा, तो उसका नाम ये देवता है, ये मानव है, ये पशु है, ये पक्षी है, तो उनका रूप और नाम हो जाएगा। विधित समानो अनुससार शास्त्र कृत, और ये सृष्टि करने से पहले वही भगवान अपने मुख से वेद को शास्त्र कृत, शास्त्र कृत का मतलब शास्त्र को, शास्त्र को प्रकट करते हैं कि ये माया के मोह से बचकर वापस मेरे पास आ जाए। तो ये सृष्टि की लीला की बात कर रहे हैं। जब वही भगवान, यही भगवान श्री कृष्ण, जब इनकी दोबारा प्रलय के बाद सृष्टि करने की इच्छा होती है कि नाना प्रकार के 84 लाख के नौ और नाम और रूप और गुणों वाले सृष्टि जब करनी होती है जीवों की, तो वो प्रकृति के हवाले कर देता है इन जीवों के कर्मों के साथ। वो कैसे करता है? अपने निज वीर्य के द्वारा, निज वीर्य चोदित उसके द्वारा करता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पहले देते हैं भगवान शास्त्र, पहले शास्त्रों को प्रकट करके और फिर नाना प्रकार के नाम रूप वाले जीवों को प्रकट करने के लिए प्रकृति को आदेश करते हैं और कहते हैं आप करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप करो प्रकृति और उससे सृष्टि करो। लेकिन करेगी किसकी शक्ति से? निज वीर्य से करेगी। क्या काम क्या करती है? जीवों को मोह में डाल देती। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इससे पहले वाले श्लोक में प्रलय की बात की और सृष्टि से पहले भगवान कैसे होते हैं उसका बात किया और कहा क्या कि भगवान के गुण रूप नाम ऐसे ही अपने स्वरूप में रहते हैं। अब आगे वो एक और भगवान की पुरुष अवतार की लीला की बात करती है कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। तो ये श्लोक सृष्टि का वर्णन कर रहा है। ये भी भगवान की नित्य लीला है। प्रभुपाद जी कहते सृष्टि लीला भी है, रास लीला भी, ये सब नित्य लीला है, ये हमेशा होती रहती है। महाविष्णु अपने श्वास से पहले वेदों को प्रकट करता है, शास्त्र कृत, और उसके बाद प्रकृति को शक्ति देके कहता है अब आप सृष्टि करो। तो प्रकृति के, मतलब प्रकृति के पीछे कैसे चलता है? बोला निज वीर्य चोद, अपनी शक्ति देके कहता है अब ये सृष्टि आप करो। और करती क्या? निज जीव माया, जीवों को माया में डालती है ये प्रकृति। और कौन से रूप देता है? देवता है, मानव है, पशु है, ऐसे इनके नाम रूप देती है। लेकिन वेद क्यों देती है? ताकि कर्म ज्ञान योग भक्ति इसके मार्ग से, शास्त्रों से वो भगवान को पा सके। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं दो प्रकार के जीव हैं, एक नित्य मुक्त है, एक नित्य बद्ध है। नित्य मुक्त भगवान के धाम में सदा रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, जहां भगवान जाए वहां जा भी सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। एक नित्य बद्ध है, बधे हुए हैं अपने कर्मों से, प्रकृति के तीन गुणों से। तो यहां जो नित्य मुक्त है वो तो नित्य मुक्त है, परंतु जो नित्य बद्ध है, नित्य मुक्त है ना, भगवान के साथ हमेशा सेवा में लगे होते हैं, उनके साथ भगवान का आदान प्रदान हमेशा रहता है और दिव्य स्तर की सेवा में भगवान के साथ रहते हैं, वो भौतिक सृष्टि के कार्यों से परे। परंतु जो नित्य बद्ध है वो है बाहरंग शक्ति के अधीन, और बाहरंग शक्ति का काम है असल में उनको सुधारना, क्योंकि वो भगवान के धर्म के नियमों के विरुद्ध हैं। भगवान जो पिता है उनको भूलकर वो इस संसार में स्वयं स्वामी बनने चाहते हैं, इसलिए माया ऐसे भूले भटके जीवों को सुधारने के लिए है। वो समझते हैं कि हम प्रकृति की का ही पैदाइश हैं और इसी में रहेंगे और यहीं सुखी रहेंगे और यहीं खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, पता नहीं लगता है कि एक समय सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लोग ऐसे समझते हैं कि हम सदा यहां रह जाएंगे। भगवद गीता में भगवान ने कहा है ये तो कल्प कल्प में ब्रह्मा जी के दिन के ऊपर के बाद सृष्टि सब समाप्त होती है, फिर कल्पांतर दोबारा सृष्टि होती है। ये 9 के 7 की बात कर रहे हैं। यहां शब्द भूय प्रभुपाद जी के लिखते हैं, भूय का मतलब है पुनः भगवान सृष्टि करते हैं। इसका मतलब ये सृष्टि होती है फिर रहती है कुछ समय, फिर प्रलय होती है और ये फिर सृष्टि होती है। ये भी नित्य चल रही है, ये नित्य चल रही है। और कैसे चल रही है? भगवान की शक्ति के द्वारा। ऐसे क्यों भगवान कर रहे हैं? बद्ध जीवों को एक मौका देने के लिए, एक अवसर देने के लिए। उनके लिए वेद पुराण दिया है, साधु संत दिया है, गुरुदेव दिए हैं, जिनके आश्रय लेकर शास्त्र की शिक्षा का मार्ग माया से मुक्त होकर और भगवान के धाम चला जाए, इसीलिए सृष्टि करते हैं। सृष्टि भी भगवान की करुणा है, कृपा है, प्रलय काल में सोए हुए जीव को उठाकर और वेद शास्त्र देकर साधु संत नित्य मुक्तों को भेजकर मार्गदर्शन का व्यवस्था करते हैं, लेकिन सुधारने के लिए, दंडित करने के लिए माया उनको सुधारने का प्रयास भी करती है। तो दोनों काम साथ चलते हैं। यहां उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता में लिखा है कि प्रकृति मेरे आदेश में सृष्टि करती है। अब रूप नाम की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो जीव है उसका कोई रूप नाम नहीं है, परंतु जब वो प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करता है और भोग करने की झूठी इच्छा उसके अंदर आती है तो उसको नाना प्रकार के शरीरों में डाला जाता है, परंतु उनके लिए शास्त्र दिया गया है ताकि वो अपने स्वरूप को समझकर और इस बंधन से मुक्त होकर वापस आ जाए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, यहां लिख रहे हैं, यहां झूठे नामों में संसार इतना बंधा हुआ है, जहां शरीर का जन्म हुआ वो देश हो गया, जिसके घर में हो गया वो जाति हो गई, और फिर इस तरीके से प्रभुपाद जी लिखते हैं आधुनिक ये जो राष्ट्रवाद है, फिर आगे करते कहते हैं कि कई समाज में ऐसे वाद आ गए हैं, ये साम्यवाद आ गया, ये पूंजीवाद आ गया, ये राष्ट्रवाद आ गया, तो ऐसे जितने वाद हैं ये सब शरीरों के झूठे नाम हैं, और इन सब इज्म के द्वारा जो हमारी शक्ति है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए वो व्यर्थ चली जा रही है, और इसी कारण से लोग सत शास्त्र का श्रवण करने में रुचि नहीं रखते, गीता वितरण करने के लिए जाते हैं लेने को तैयार नहीं है। ऐसा अद्भुत शास्त्र है जो जीवन बदल सकता है, भगवान की वाणी है, लेकिन लोगों को लेने में आश्चर्य लगता है कि मोबाइल को रिफिल हर महीने में 200-300 का करने को तैयार है और उसमें बेकार की बातें ही ज्यादा करनी है, और ये भगवान का एक बार गीता लो और सारे जीवन पढ़ते रहो और भगवान से रोज बात होती रहे, उसको लेने में लोग बहुत कंजूसी करते हैं। तो भगवान शिक्षा देश काल के अनुसार देते हैं, जो कहीं लोगों को उतनी शिक्षा दी जितने के वो योग्य थे, प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु भगवत गीता जो है वो मानव समाज के लिए है, मानव मात्र के लिए है, परंतु माया ने लोगों को इतना मोहित कर रखा है कि भगवत गीता को पढ़ने में रुचि लोगों की नहीं है। पहले भगवत गीता पढ़ लें, पारंगत हो जाएं, तो फिर भागवत को पढ़ें, लेकिन दुर्भाग्य है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते हुए दुनिया में झूठे भोग के पीछे भागते हुए लोग भगवत गीता का सहारा नहीं ले रहे। प्रतिवर्ष गीता का इस महीने में वितरण करने का एक बहुत बड़ा संकल्प कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्त लेते हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, फिर भी लोग मानो दस में एक मुश्किल से लेता है, दस के पास जाते हैं तो एक लेता है, 20-25 के बाद एक लेता है। कुछ ऐसे उधार भी हैं जो एक के बजाय 100 लेते हैं, 100 के बजाय 1000 लेते हैं, ऐसे भी हैं। कुछ देवताई पुरुष हैं जिनको दूसरों को देने के उत्साह भी है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा पड़ा है लेकिन एक भी नहीं लेंगे। तो ये सब इस दुनिया के अंदर माया का खेल है। हमको अपने गीता को पुस्तक के वितरण करने के कार्य को और तीव्र गति से करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मेरे इस गीता के संदेश को श्रद्धालुओं तक पहुंचाता है उससे ज़्यादा कोई मुझे प्रिय ना था, न है, न भविष्य में होगा। तो कैसे भी हमको ये कार्य करना चाहिए। हम अब आगे के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। सवा अयम यत् पदम अत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमा तरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्या उतकीलात्मलात्मना ननवेश सत्वं परिमार्ष्टुं भारति। सवई, वो जो अर्जुन जिसके साथ है ना, जो अर्जुन का सखा माना जाता है, जिसके ऊपर छाता अर्जुन लेके खड़ा है, सवई अयम, वही है ये, जिसको यत पदम, जिसके चरण कमलों को सूर्य, बड़े बड़े देवता और भक्तगण, सूर्य वैसे देवता को कहते हैं और सूर्य भक्तों को भी कहते हैं। कैसे देव भक्त, कैसे जितेन्द्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, कैसे इंद्रियों को वश में करते हैं, निर्जित मात्रस्य मात, निर्जित मात्रीश्वना, प्राणों को वश में करके, प्राणों को वश में करेंगे तो इंद्रियां वश में होंगी। क्या करते हैं वो, पश्यन्ति भक्त्या, वो शुद्ध भक्ति के द्वारा देखते हैं क्या, भगवान के चरण कमल, भगवान का मुखमंडल। तो क्या करते ये जितेंद्रिय, क्या करती है, प्राण वश में करते हैं तो क्या होता है, होता है उत्कलित मा उल उत्कली उत्कलिता मलात्मना, जो हृदय के ऊपर मैल है वो सब साफ हो जाता है, वो बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं, तब वो भगवान को देख सकते हैं। ननवेश, और कोई रास्ता नहीं है, केवल भक्ति मात्र से। ये मत समझना कि प्राणायाम करने से भगवान मिलेंगे, ये मत समझना कि योग करने से भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे भक्ति से केवल। क्यों, भक्ति क्या करती है, सत्वम परिमार्ष्टम महारति, ये हमारे अस्तित्व को, हमारी बुद्धि को परिमार्जितम, परिमार्ष्टम, पूर्ण रूप से साधो देती है। भक्ति चेतो दर्पण मार्जन कर देती है। तो ये श्री कृष्ण वही है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वही साक्षात भगवान यही है। उनके दिव्य शरीर का अनुभव महान भक्त करते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और प्राणों को वश में कर लिया है, और एकमात्र भक्ति के साधन के द्वारा अपने अस्तित्व को शुद्ध करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं केवल एकमात्र भक्ति से। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया है, अपने प्राणों को संयम में किया है, अपनी बुद्धि को पवित्र किया है, और कैसे किया है, भक्ति के द्वारा किया है, वो निश्चित रूप से भगवान का दर्शन करते हैं। और यही वो भगवान है जो उनकी बुद्धि को पवित्र करता है भक्ति के द्वारा। अब पुरुष अवतारों का वर्णन पूरा करके इस श्लोक में पुरुष अवतारों का मतलब है जो सृष्टि करते हैं, महाविष्णु का वर्णन किया, गर्भोदक्षाई का किया। अब कहते हैं कृष्ण, ये जो कृष्ण है ना, ये वो वाला विष्णु नहीं है, वो वाला ये नहीं है, वो सब इससे निकलते हैं, ये उनसे अलग है, ये तो हमारे आंखों के सामने अभी दिख रहा है, वो कहां दिख रहे हैं? इस द्वापर युग में, 28वीं चतुर्युगी में, द्वापर के अंत में, वैवस्वत मनमंत्र में ये अवतार लेके आया, ये वही है, वो सब इसी के अंश हैं। इसकी लीलाएं नित्य हैं, भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है, परंतु अभी सिर्फ द्वापर में है, ये देखा जाएगा निरंतर। आज भी कोई भक्ति करेगा तो आज भी उसी भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, ये है इस श्लोक का भाव। जो अपने प्राणों को संयम में कर लेते हैं, निर्जित मातरीश्व न निर्जित वश में कर लेते हैं, मात्रई समेत अपने प्राणों को और अपने इंद्रियों को जो वश में कर लेते हैं, कैसे? आत्मना, अपनी बुद्धि से। और वो बुद्धि कैसे होती है? भक्ति से पवित्र हो जाती है और प्रबुद्ध हो जाती है भक्ति से। मातृष्वनः, हाँ, तो फिर क्या करते हैं? फिर देखते हैं भगवान के चरण कमल और भगवान का दिव्य रूप पदम। हमारी इंद्रियां हमारे प्राणों के ऊपर आश्रित हैं, इसलिए प्राण वश में होंगे तो इंद्रियां भी वश में होंगी। श्रुति में यह लिखा है, दृश्यते त्वा अग्रया बुद्धया, जिसको तीव्रता होगी बुद्धि में कि मुझे भगवान को देखना है, वही देख सकता है। कठोपनिषद में ऐसे लिखा है, फिर इस श्लोक में ये कुरु नारियां कह रही हैं, कुरुवंश की कुरुवेंद्र नारियां कह रही हैं, बुद्धि को पवित्र करने वाला यही है, यही कारण है उनकी बुद्धि को पवित्र करने वाला, निश्चित रूप से। ननु योग नहीं, प्राणायाम नहीं, केवल बुद्धि को यही पवित्र करता है। कब? भक्ति, केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा। तो वो संत, वो साधु, वो भक्त जिनको भक्ति में तीव्रता है, तीव्रेण भक्ति योगेन, बड़ा तीव्रता है भक्ति में, वो ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और ये कहा गया है प्रेजेंट टेंस में, चलती हुई बात कही गई है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि जब कृष्ण था तब देखा जा सकता है, आज भी इसको भक्ति के साथ देखा जा सकता है। वो भगवान की लीलाएं आज भी भक्तों के हृदय में, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, उनमें प्रकट होती रहती हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को, अतः प्रारधयन्ते सा बुद्धया गोपवेशो मे पुरुष पुरस्ताद आविर्भवोह बभूव। मेरा प्रारब्ध हुआ, मतलब 50 साल जब मेरे पूरे हुए, अभी ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं, जब मेरे 50 साल पूरे हुए तो मैंने गोप वेश में श्री कृष्ण का दर्शन किया। इसका मतलब नित्य भगवान की लीला का, गोपाल तापनी उपनिषद में ब्रह्म संहिता में भी ऐसे ही लिखा है कि ब्रह्मा के सामने भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता कहती है, भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, श्री कृष्ण कहते हैं तत्व से। ये बात यहां भी कही गई है कि जो भक्त हैं जो अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, निर्मल का मतलब साफ, मल से रहित कर लेते हैं। किससे? भौतिक, इसके ऊपर जो मिट्टी चढ़ी हुई है। कैसे? तीव्र भक्ति के द्वारा वो भगवान की अनुभूति कर लेते। जितेंद्रिय का मतलब है जिनका अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण वश है, जिसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में है। शरीर में इंद्रियां ही शक्तिशाली सक्रिय हैं और उनको रोकना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद के उनको रोकना बहुत मुश्किल है। रोकने का जो प्रयास करते हैं वो तो सफल हो ना हो उसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। भौतिक प्रकार से इसको कृत्रिम रूप से वश में करने का प्रयास करेंगे तो विश्वामित्र ने बहुत बड़ा तपस्या की, लेकिन मैन का आई तो सारे इंद्रियों का जो वश में की हुई थी वो लुभायत लालायत हो गई मेनका की तरफ। और शकुंतला का जन्म हुआ, उद्देश्य तो इसका भी कोई विशेष था, शकुंतला के द्वारा भरत का जन्म हो, जो महाराज भरत का वंश चलेगा, ये भरत वंश जिसके अंदर ये पांडवों का जन्म हुआ है। परंतु कहने का तात्पर्य प्रभुपाद जी का ये है कि कृत्रिम रूप से इंद्रियों को वश में करना सफलता नहीं देता है, परंतु ये इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में लगाई जाए, जैसे भगवत गीता में लिखा है, रसोवयमस्य परम दृष्टवान निवर्तते, अगर उत्तम सुख मिल गया इंद्रियों को और वो परम रस है कृष्ण, क्योंकि वो है अखिल रस अमृत मूर्ति, उसकी जिसको अनुभूति हो गई, उसकी सेवा में जिसको सुख मिल गया, वो फिर तुच्छ इंद्रियों के भोग की तरफ नहीं भागेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये बहुत बड़ा अंतर है, कीर्तन रूप से इंद्रियों को वश में करना और भक्ति से इंद्रियों को सेवा में लगाने में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये भक्ति जो है निष्क्रियता नहीं है, ये सक्रियता है। जो चीज भगवान की सेवा में की जाए वो पवित्र हो जाती है तत्काल। चीजें भौतिक हम समझते हैं क्योंकि अज्ञानता है। आज प्रभुपाद जी कह रहे थे भाई संसार झूठा कैसे हो सकता है, भाई सूर्य सच्चा है तो सूर्य की किरणें झूठी हैं क्या? सूर्य की किरणें सच्ची हैं कि झूठी हैं? झूठी कैसे हैं? सच्ची हैं। तो ये प्रकृति भी भगवान की शक्ति है तो सच्ची है, तो ये भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये सच्ची हो जाएगी, और अपनी सेवा में लगाएंगे तो झूठी हो जाएगी। झूठी हो जाएगा मतलब है हमको झूठे रास्ते पर ले जाएगी। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी जब तक वासुदेव सर्वमिति के लिए बड़ा अभ्यास और प्रयास करके वेद वाच कर नहीं पहुंचेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ये श्लोक 7वें अध्याय का प्रभुपाद ने यह लिखा है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ। इसलिए भक्ति को आरंभ से करना चाहिए। क्या है के लिए तो कई जन्मों में जाने की जरूरत क्या है? इसलिए भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान जो है वो भगवान हृदय में अपने आप प्रकाशित कर देते हैं सीधा। और इंद्रियां अपने आप बहुत सरलता से वश में हो जाती हैं जब भगवान की कृपा होती है। तो ये बात लिखी है, the factual knowledge become revealed in the heart of a devotee due to the dictation by the Lord from within। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक पत्रकार पूछने आए थे कि इस बहुत बड़ी उम्र में परिपक्व अवस्था में 70 के बाद ये 70 से अधिक पुस्तकें आपने इतनी सफलता से और स्पष्ट बिना किसी त्रुटि के कैसे लिख ली? तो प्रभुपाद जी नम्रता के कारण कुछ बोले नहीं, लेकिन प्रभुपाद के शिष्य बड़े उत्साहित थे, कहने लगे इंस्पायर्ड बाय गॉड, भगवान ने इनको प्रेरणा दी। पत्रकार तो आश्चर्यचकित हो गया कि प्रेरणा तो मूसा को दी थी और तो कोई उदाहरण है नहीं, तो क्या ये इतना बड़ा कोई भगवान का संदेश वाहक है। तो प्रभुपाद से पूछा, क्या आर यू इंस्पायर्ड बाय गॉड, भगवान ने आपको प्रेरणा दी? प्रभुपाद का नो, नहीं। तो सभी चुप करके देखने लगे। प्रभुपाद ने कहा, गॉड हैज डिक्टेटेड मी, प्रेरणा नहीं दी है, भगवान ने मुझे कहलाया और लिखाया और मैंने लिखा। पत्रकार बेचारे बोरी बिस्तर बंद करके चले। अब इससे क्या पूछे, जिसको भगवान ने लिखाया है तो प्रभुपाद ने कोई अपने मन से ऐसे कहा नहीं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, गोविंद देव ने मेरे को वेदांत सूत्र की भाषा लिखाई। कविराज गोस्वामी कहते हैं, मदन मोहन ने मेरे को सारी लीला लिखाई। तो ये भगवान अपने भक्तों के, ये प्रभुपाद जी अपने जीवन का अनुभव लिख रहे हैं कि भक्ति से, भगवान हृदय से भक्त के अंदर वो सब ज्ञान प्रकट कर देता है जिसकी आवश्यकता उस भक्त को होती है। तो अब एक श्लोक और का शुभारंभ आज कर लेते हैं। सवा आयम सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेशु गोयेशु च गोय वादि भी य एक ईशो जगतात्म लील्या सृजते अवत्यति न तत्र सज्जते। फिर स वा अयम, ये जो अर्जुन का सखा सख्य है, ये अर्जुन का जो सखा बना हुआ है, ये वही है। कौन सा? अनुगीत सत कथो वैदेशु गुह्य, वेदों में जिनका पता नहीं लगता, परंतु सत कथा अनुगीतम, बड़े बड़े शुद्ध भक्त इनके चरित्र को गाते हैं। कहां से पता लगता है? गुह्यवादी भी, जो वेदों के सार को जानते हैं, वो गुह्य को जानते हैं, वो इस जानते हैं कि ये वही है। कौन है वो? जगतात्मलील है, या एको ईशो जगतात्मलील, ये वो एक ही ईश्वर है, ये जगत की आत्मा वही है, वो लीला कर रहा है। तो वो दूसरा है जिसने पहले सृष्टि कर, नहीं नहीं, सृजते अवति अति न, यही सृष्टि करता है, यही पालन करता है और यही संहार करता है, परंतु न सज्जते न तत्र सज्जते, इसमें आसक्त नहीं होता। ये सब इसका खेल है, ये इसकी लीला है। इसको जानते कौन है? बोला सत कथो अनुगीत सत कथो, जो वेद गुह्य, वेदों में बहुत गोपनीय है, केवल शुद्ध भक्तों के हृदय से इसकी कथा का श्रवण हो सकता है। क्या कहते हैं अबे सखे का एक अर्थ यहां लिखती है, ए सखी, प्रभुपाद ने लिखा हे सखी, एक सखी दूसरी को कह रही है कुरु नारी, वही है ये परम पुरुष भगवान जिनकी कथा बड़ी आकर्षक है, जो वेदों के अंदर बहुत गोपनीय रूप से रखी हुई है और जिसको भगवान के महान शुद्ध भक्त गाते हैं। ये वही है जो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सखी ये जो कृष्ण सामने दिख रहा है ना, श्याम सुंदर मानव रूप में अर्जुन का सखा है, ये उन सब भक्तों के द्वारा वेदों के गोपनीय गीतों का विषय है, इसी के गीत गाते हैं, ये इसी के गीत गाते हैं वेदों में जो गीत हैं और जो भक्त गाते हैं। ये सृष्टि करता है, पालन संहार करता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहता, है जगत का ईश्वर। तो इनके गोपनीय जो लीलाएं हैं वो गोपनीय भक्तों को ही पता है, इनकी अंतरंग लीलाओं का पता अंतर। अब देखिए बहुत सारे दुनिया के अंदर धर्म वाले मानने वाले हैं, लेकिन लीलाओं के बारे में किसी के पास कुछ भी जानकारी नहीं। सृष्टि के बारे में जानकारी है, कह सकते हैं कैसे सृष्टि की, प्रलय कैसे होती है कह सकते हैं, स्वर्ग नरक क्या है कह सकते हैं, लीला क्या है किसी को मालूम नहीं। लीला केवल गोपनीय भक्त भगवान के जो हैं वही गोपनीय लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। ये जो अर्जुन का सखा है, ये जो मानव रूप में यहां सामने खड़ा है, यही तो विषय है गुह्यवादियों, जो 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 लीलाओं का वर्णन करते हैं, इसी की लीलाओं का वर्णन करते हैं। ये शास्त्रों में वेदों में है लेकिन बहुत गुह्य है। यही है सृष्टि करता, यही है महान, यही है जगत का ईश्वर, पर किसी में आसक्त नहीं है। भक्तों में आसक्त है, इसलिए भक्त इसकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसके ऊपर कल पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहां लिखा है कौन गाते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी, कुमार, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि और बारह महाजनों के नाम लिखे हैं। तो यहां से कल कथा को आगे करेंगे। मैं समझता हूं कल हो जानी चाहिए इनकी प्रार्थनाएं पूरी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरि बोल। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? भगवत गीता का एक अध्याय कल बारहवां पढ़ लेंगे जल्दी में, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। और क्या, सब सारा पूरा तो मेरे ख्याल में हम तो पढ़ भी सकते हैं घंटे में पूरा फास्ट में, लेकिन सब लोग अगर लेके बैठेंगे पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। ग्रुप में डाल के देख लीजिए क्या है, तो कल देख लेंगे। पूरी पढ़नी है तो पूरी पढ़ेंगे, नहीं तो एक अध्याय पढ़ेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा, फिर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपकी इच्छा हो।
जी प्रभु जी, एक चीज पूछनी है।
हाँ जी,
दो पॉइंट है। एक तो ये जो जिसमें प्रभुपाद जी नित्य मुक्त और नित्य बद्ध का बता रहे हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने एक वर्ड यूज किया है कि नित्य बद्ध आर इटर्नली फॉरगेटफुल ऑफ द रिलेशन। इटर्नली फॉरगेटफुल,
तो नित्य 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 शब्द को इटर्नल समझ लो। 15वें अध्याय में हम पढ़ के आए कि दो प्रकार के जीव हैं, क्षर चाक्षर एवच। क्षर को नित्य बद्ध कहा गया और अक्षर को नित्य मुक्त कहा गया। तो ये नित्य फॉरगेटफुल हैं एटर्नली, लेकिन फिर भी शास्त्र और साधु के संग से अगर उनको उसको स्मृति आ जाए, इसलिए सृष्टि की जाती है ताकि वो मुक्त होके और नित्य मुक्त के पद को प्राप्त कर लें। असल में वो ये एक शब्द को अगर आप इसमें से ध्वनित ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लीव पहले जीव जो है सब मुक्त थे और फिर नीचे बद्ध हो गए, इसका मतलब इसका अर्थ से यही निकलेगा सिर्फ। ऐसा नहीं है कि भगवान के धाम से कोई नीचे गिरा, ऐसा इसका अर्थ है एटर्नली कंडीशन है, इसका मतलब वहां थे ही नहीं। हाँ जी,
और एक चीज और समझ, जैसे अभी आपने बताया कि जो लीलाएं हैं भगवान का, उनका वर्णन है गोपनीय है, तो इनका वर्णन वैसे कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे गोपनीय में ही और पहले देखा था ना लोग जो करते थे।
हाँ जी,
गोड़िया मठ में ही लोग करते ही थे ना।
नहीं, लीला का मतलब यहाँ का, हमारे पास तो ये अर्जुन का सारथी की लीला भी लीला है, ये भी भगवान की लीला है। जैसे कल ही हमने पढ़ा था, भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे कोई भेद अभी नहीं रह गया है कि वृंदावन का कृष्ण श्याम सुंदर या पार्थ सारथी, मेरे लिए तो दोनों वो एक ही है, और जो नंद बाबा के हृदय में वो भी वही है, गोपियों के हृदय में वही है, जितना जिसका प्रेम है उतना उसके साथ उसी रूप से उनके साथ व्यवहार कर रहा है। तो ये लीलाएं जो है, यहां जो मुख्य बात यह है कि इन लीलाओं का वर्णन यहां जो कहा गया है कि अन्य अन्य स्थानों पे अन्य मजहबों में आप देखें लीला का तो भगवान का वर्णन है ही नहीं, कहीं लीला का वर्णन नहीं है। और लीलाओं का वर्णन हमारे पास सनातन धर्म में भी, अगर भाई भागवत पढ़ते हैं लोग, रामायण पढ़ते हैं, तो राम जी की लीला या कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं, लेकिन अनुभूति किसी को उसकी हो वो बहुत कम लोग हैं, उसको भी ज्ञान के मार्ग में ले जाके निराकार कर देते हैं। तो गोपनीय भगवान की लीलाएं जो है वो शुद्ध भक्तों के, इसलिए प्रभुपाद जी प्रवचन तो भगवत गीता के ऊपर पब्लिक में देते थे, भागवत का या चेतना चेतन तो भक्तों के संग में ही, क्योंकि वो लीलाएं भगवान के अंतरंग लीलाएं हैं। वो सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा कि भगवान सारथी कैसे बनेगा भक्त का, अर्जुन का, ये भगवान कैसे हो सकता है, और यशोदा की गोद में बैठा है तो भगवान बच्चा कैसे हो सकता है। हमने हमने अपने दो कैलेंडर एक बार छपाए थे, बहुत सालों की बात है, एक पार्थ सारथी का था और एक यशोदा के गोद में नंद लाला था छोटा। तो एक बहुत महात्मा, बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, बड़े उनके अनुयायी थे। मैं ले गया तो वो पार्थ सारथी वाले कैलेंडर को बोला, ये भगवान है, गीता दिया है, ये बच्चा थोड़ी भगवान हो सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे भगवान की लीलाओं के विषय में हमारे अपने समाज में भी नहीं जानते। बाकी जो आप गौड़िया वाले कहते हैं, वो लीलाओं का वो सिर्फ बात करते हैं राग अनुगा भक्ति की, और राग मार्ग में भी केवल गोपी भाव की भक्ति की वो एक ही बात करते हैं, क्योंकि प्राय हमारे जितने आचार्य हैं वो मंजरी हैं, वो प्राय मंजरियां हैं, और जितना हमारे पास लिटरेचर है वो सब राग मार्ग का लिटरेचर है। लेकिन राग मार्ग तक पहुंचने के लिए अनर्थ निवृत्ति को पार तो करना पड़ेगा, पहले अनर्थ निवृत्ति को पार करना पड़ेगा। उस बाद उसको पार करने के बाद एक तो पहले रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम अनर्थ निवृत्ति को पार किया हुआ हो, तब राग मार्ग का अभ्यास कर सकता है। और दूसरा, लोभ होना चाहिए, लोलुप होना चाहिए कि मुझे इस प्रकार से, जैसे ये सखा या ये सखी कृष्ण की सेवा कर रही है, ऐसे मुझे करनी है, मैं इसके जैसे कैसे सेव, ये मन में पहले भाव तो आए, ऐसे लाभ लोभ पैदा हो और वो और अनर्थ निवृत्ति हो, तो फिर इसके शिक्षा की आवश्यकता है, तब ये कथाएं की जा सकती हैं। तो वो ये दो चीजें पहली होनी चाहिए। अब नए नए भक्त हैं जो अभी तक गीता भी एक बार नहीं पढ़ी है, भागवत भी नहीं पढ़ी है, वो अगर बैठ के ये बात करेंगे स्वरूप की या गोपी भाव की, तो वो समर्थ नहीं होंगे। वो फिर समाज के अंदर जो है, प्रभुपाद ने वहां लिखा है वो सिद्ध प्रणाली और सहजिया भाव के द्वारा, सिद्ध प्रणाली वाले चेतना महाप्रभु के पार्षदों को जो है कृष्ण पार्षदों दोनों के साथ नहीं मानते, उनका एक ये गलती है। तो ये बहुत गोपनीय चाहिए, इसके लिए अनर्थ निवृत्ति पार किया हुआ हो और हृदय में लौलुप्य हो, और विशेष बार बार भागवत आदि सुनने के बाद कोई ऐसा भक्त जिसकी कृष्ण के प्रति सेवा से वो आकर्षित हुआ हो, उसी भक्त का फिर चिंतन करे कैसे वस्त्र पहनता है, कैसे कृष्ण की सेवा करता है, तो उसी के पीछे खड़े होके उसका सहयोग करे, तभी ये राग मार्ग में प्रवेश होता है। तो ये कोई सिखाने की बात नहीं है, ये मैच्योरिटी के ऊपर अपने आप आने लगेगा। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम
हरि बोल।
प्रभु जी। घर में, हरि बोल प्रभु जी, अगर घर में किसी की मृत्यु हो तो एकादशी का व्रत ले सकते हैं?
व्रत तो मेरे ख्याल में 11 दिन ही रखो तो अच्छा है, उसका भला होगा। हाँ ना,
अच्छा
एकादशी का
अच्छा
व्रत करना, जप करना, पूजा नहीं करनी है अगर अपने ही गोत्र का है तो।
हाँ, पापा जी की डेथ हुई ना, तो मतलब फास्ट तो रख सकते हैं ना?
हाँ, फास्ट रखिए, फास्ट रखिए, उनका फल उनको दे दीजिए और अच्छा है।
जी,
हरे कृष्ण।
नहीं, लोग कह रहे हैं ना अभी हम शुद्ध, घर वाले कह रहे हैं अभी हम शुद्ध नहीं
अरे
हुए,
आप शुद्ध
हम
भाई,
व्रत नहीं रख
भगवान
सकते।
का व्रत रखने से शुद्धि होंगे, वो तो व्रत रखने में कोई आपत्ति नहीं है, हरे कृष्ण जपने में कोई आपत्ति नहीं है, बाकी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए।
जी, नहीं प्रभु जी, वो तो कैसे करेंगे क्योंकि उनकी क्रिया में बैठे हैं ना।
हरे कृष्ण। हाँ ठीक है,
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।